ओम ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकरामयं ददाति स्वप्रदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सर्वगणरघुनाथान्वितं तमसजीवम्। साद्वैतं सामवेदं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सर्वललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारिणी विशेष शुभवादी पाश्चात्य देश। पीछे वामन भगवान अवतरित हुए थे तो हमने उनके बारे में चर्चा की थी कि भगवान वामन किस प्रकार अवतरित हुए चतुर्भुज रूप में, जैसे भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे और फिर उन्होंने कश्यप मुनि और अदिति माता के कहने पर एक छोटे बालक का रूप धारण कर लिया, बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरह, है ना, बिल्कुल सेम स्टोरी चल रही थी, है ना। और सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा शिव इंद्र वरुण इत्यादि सब लोग आए अपने पत्नी धर्म पत्नियों के साथ और उन्होंने भगवान को विभिन्न तरह की भेंट प्रदान की थी उन्होंने। तो भगवान वामन गए और उन्होंने बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी। बलि महाराज ने कहा फाइन, आप 3 पग भूमि ले सकते हो। तो शुक्राचार्य ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं नहीं तुम्हारा सब कुछ लूट जाएगा। तो बलि महाराज ने अपने गुरु को रिजेक्ट कर दिया। तो एक्चुअली में शिव जी नारद जी से मिले थे एक दफा और शिव जी ने नारद जी को बोला कि आखिर क्वेश्चन ये है कि बलि महाराज को भगवान की कृपा प्राप्त कैसे हो गई, है ना। बलि महाराज मैं ऐसा कुछ खास गुण तो था नहीं, शिव जी कह रहे हैं उन्होंने ऐसी कोई खास बात नहीं थी। 3 लोग दे दिए, तुच्छ सी चीज है 3 लोग देना, कौन सी बड़ी बात है, बेकार है 3 लोग दे दिए, तो बहुत घटिया चीज दान में की भगवान ने बलि। और फिर गुरु की अवज्ञा भी कर दी, गुरु ने बोला था भैया ऐसे नहीं ऐसे व्यवहार करो, नहीं माना तो गुरु ने श्राप दे दिया, सारी संपत्ति धन ऐश्वर्य छीन लिया और वरुण के पास में बनना पड़ा, गरुड़ जी ने बांध दिया था उनको रस्सी से। तो मतलब ना तो कोई अच्छी वस्तु दान में दी बलि ने और ना ही गुरु की आज्ञा मानी, गुरु की अवज्ञा भी झेल ली। तो फिर उसके बावजूद मतलब भगवान ने ऐसी कृपा क्यों कर दी उस पर कि जाके उसके द्वारपाल बन गए। अब मेरा प्रश्न समझ रहे हैं आपको, हाँ, कि कोई ऐसी बहुत बड़ी मतलब बात की होती हमारे लिहाज से देखें तो बड़ी बात है, हम लोग 100 रुपए का नोट देने में घबरा जाते हैं, नहीं? लेकिन बलि महाराज ने 3 लोक दान में दे दिए, पृथ्वी लोक, नीचे के 7 लोक, तल वितल सुतल तलातल पाताल महातल, ये सारे दान में दे दिए, ऊपर के 6 लोक है ना, भूवर लोक स्वर लोक तप महा ब्रह्म लोक, सब भगवान को दान में प्रदान कर दे, आप भेजो। ये शिव जी कह रहे हैं बेकार है एकदम, चलो दान दिया मान लिया, लेकिन उसके बदले में उसको जो कृपा प्राप्त हुई, वो कृपा और जो बलि ने भगवान के लिए किया और जो भगवान ने बलि के लिए किया, आपस में मैच नहीं कर रही चीज, कहीं गड़बड़ है कुछ। बलि ने इतना कुछ नहीं दिया था, हालांकि जब भगवान ने 3 लोक नाप दिए और बलि को बोला भैया बता तीसरा कदम कहाँ रखूं, तो बलि ने कहा मेरे सिर पे आप तीसरा कदम रखिए और मुझे अपना दास बना लीजिए, बड़ी बात है। लेकिन शिवजी वैल्यू नहीं लगा रहे उसकी, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, शिवजी उसकी वैल्यू नहीं लगा रहे। शिवजी कह रहे हैं इतनी बड़ी बात नहीं थी कि भगवान जाके उसका द्वारपाली बन गए और लक्ष्मी जी को जाके भिक्षा मांग के छुड़वाना पड़ा। तो नारद जी ने कहा फिर ऐसा मतलब क्या बात हो गई मतलब, तो शिव जी ने बोला कि इसका कारण है कि जो बलि महाराज है वो प्रहलाद महाराज के पोते हैं, तो प्रहलाद महाराज को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उन पे वो कृपा की जो कि अद्भुत है, अनूठी है, दुर्लभ है, किसी को नहीं मिल सकती, सिर्फ और सिर्फ और बल्कि शिवजी ने यहां तक उनको बोला कि मतलब ऐसा लगता है प्रहलाद महाराज के पुत्र का नाम क्या था, हाँ वो तो पिता का नाम था, बोलो बाप बेटे में कंफ्यूजन खड़ी करके, विरोचन पिता का नाम था, प्रहलाद महाराज के पुत्र थे विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि महाराज, सॉरी हाँ मैं क्वेश्चन गलत पूछ रहा हूँ, बलि महाराज के पुत्र का नाम क्या है, तो बलि महाराज के पुत्र का नाम है बाण, बाणासुर था ना, बाणासुर, और वो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था वो, और शिवजी की उसने बहुत तपस्या की, बहुत शिवजी को प्रसन्न कर दिया, और शिवजी ने प्रसन्न होकर उसको 1000 भुजाएं दे दी, ऐश करो। तो बाणासुर इधर उधर घूमा, वापस शिवजी के पास आकर और बोला कि बड़ा बोझ लग रहा है इन भुजाओं का, कुछ कर नहीं पा रहा, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, आप ही आ जाओ। शिवजी को ही ललकार दिया, आओ मेरे से लड़ो। और भगवान कृष्ण उसका वध करने के लिए गए तो शिवजी ने प्रार्थना की प्लीज छोड़ दो, तो शिवजी कह रहे हैं कि बाणासुर पे कैसे भगवान ने कृपा कर दी कि बाणासुर को इतनी सुविधाएं प्रदान कर दी, अपना पार्षद सा बना लिया उसको। तो शिवजी ने कहा कि बलि महाराज पर जो कृपा की और जो बाणासुर पे कृपा की दोनों का कारण यह है कि वो प्रहलाद महाराज से संबंधित है, प्रहलाद महाराज के रिश्ते में आते हैं, प्रहलाद महाराज के वंशज हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद महाराज को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने इतनी अद्भुत कृपा की 1200 और बलि महाराज। प्रहलाद महाराज पर से इतना क्यों खुश हो गए थे भगवान? कृष्ण एक्चुअली कह रहे हैं कि ब्रह्मा, शिवजी, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, इनसे भी ज्यादा मुझे कौन प्रिय है? प्रहलाद महाराज। तो जब शिवजी नारद जी को ये बात बता रहे थे तो उनको एक साइड पे लेके गए, वो उनको कहा कि मैं तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंशियल बात बता रहा हूं। तो नारद जी ने कहा बताओ क्या कॉन्फिडेंशियल बात है? तो उन्होंने कहा कि मुझसे भी ज्यादा, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा, महालक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय अगर कृष्ण को कोई है तो वो प्रहलाद महाराज है। क्यों? सेवा में ब्रह्मा जी भी लगे हैं, सेवा में शिव जी भी लगे हैं, सेवा में लक्ष्मी भी लगी है। और कब से लगी हुई है लक्ष्मी जी सेवा में? नहीं, हमेशा भगवान की सेवा में निरंतर रत रहती है। हमेशा भगवान की चरण सेवा करती रहती है, भगवान के वक्ष स्थल पर विराजमान है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं मुझे लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय है तो प्रहलाद है। तो शिवजी एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों प्रहलाद महाराज उनको इतने प्रिय हैं। तो शिवजी ने कहा कि ब्रह्मा, मैं और लक्ष्मी जी जो हैं सेवा में तो लगे हुए हैं लेकिन कष्ट कभी नहीं उठाए। कष्ट क्या उठाए उन्होंने? लक्ष्मी जी ने क्या कष्ट उठा लिया बताओ? आराम से सेवा कर रहे हैं। नहीं, ब्रह्मा जी ने क्या कष्ट उठाए? एक दो बार पंगे हुए तो उनके अपने गलती की वजह से हुए, जब उन्होंने सीधा भगवान से ही टक्कर ले ली जाके। अदरवाइज कभी उन्होंने ऐसे कोई कष्ट नहीं उठाए। लेकिन प्रहलाद महाराज जिससे रक्षा की उम्मीद की जा सकती है, पिता से, वही पिता मारने पर उतारू हो जाए, कौन बचाएगा? नहीं, कौन बचाने वाले, बचाने के लिए आने वाला? कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि बच जाए। कितनी खतरनाक सिचुएशन थी प्रहलाद महाराज, है ना? उनको पत्थर के नीचे उछलवाया, पहाड़ों से नीचे गिरवाया, जहर पिलाया, जहरीले सांपों से डसवाया, हाथी के पैर के नीचे उछलवाया, आग में जलाया, पत्थर बांध के पानी में डुबो दिया। मतलब कोई तो चीज छूटी होगी, कोई चीज नहीं छूटी। और प्रहलाद महाराज है कि कंप्लेंट ही नहीं कर रहे। प्रहलाद महाराज ने एक बार भी नहीं कहा ये क्या हो रहा है। हम कई बार बहुत सारे भक्तों से मिलते हैं, बहुत अच्छे भक्त होते हैं, लेकिन बहुत से भक्त ये कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं कि ये हमारे साथ में आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों हम तो इतने अच्छे से चैंटिंग कर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? आप लोगों की है ऐसी कंप्लेंट्स? आप में से कंप्लेंट आप सबकी है मैं जानता हूं, लेकिन हर कोई इस बात को स्वीकारेगा नहीं। प्रहलाद महाराज की कोई कंप्लेंट नहीं थी, कोई कंप्लेंट नहीं उन्होंने की। भगवान के जितने भी महान भक्त हुए आप उठा के देख लो हिस्ट्री को, कुछ भी हो गया कंप्लेंट नहीं की। हरिदास ठाकुर सिर्फ चैंटिंग कर रहे थे, पकड़ के ले गए मुसलमान सैनिक बिना किसी बात के, बिना किसी कोई उकसाया नहीं, कोई भड़काया नहीं किसी को, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोला, फिर भी उनको लेके गए और 22 बाजारों के अंदर उनको कोड़े से मारा गया, कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। और बल्कि सैनिकों ने कहा मरते क्यों नहीं हो, तो हरिदास ठाकुर ने कहा अगर आपको मेरी मृत्यु से संतोष मिलेगा मैं मर जाता हूं। समाधि में चले गए उनको ये दिखाने के लिए कि मेरी मृत्यु हो गई, कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे। पांडव आग में जल गए, भीम को जहर खिला दिया, समुद्र में डुबा दिया, मतलब क्या कुछ नहीं किया, पत्नी का अपमान कर दिया सबके सामने, मतलब लेकिन कभी कंप्लेंट नहीं की उन्होंने। बल्कि कुंती महारानी ने तो यहां तक बोल दिया, दुख था तो अच्छा था, आप बार बार याद आ रहे थे, अभी सब चीज ठीक हो गई है, मन जो है अब विषय वस्तु में जा रहा है, आपका स्मरण कम होगा, दुख ज्यादा अच्छे हैं, प्लीज हमें दुख दे। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि क्या हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, करनी चाहिए? प्रभुपाद कहते हैं हमें ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हम झेल नहीं पाएंगे अगर भगवान ने मान ली तो, है ना। जो हमारे कर्मों के फलस्वरूप हमें दुख मिल रहे हैं हम वो भी झेल नहीं पा रहे। अगर कृष्ण ने कृपा रूपी दुख अगर भेज दिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमको, नहीं? तो प्रभुपाद ने बोला कि आप जितने दुख है वही झेलते रहो, गनीमत है। कोला बेचा श्रीधर, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, क्या कंप्लेंट किया? कोई कंप्लेंट नहीं। और शिवजी ने बोला कि नारद जी एक चीज बहुत कमाल की है। नारद जी ने बोला क्या? तो उन्होंने कहा भगवान ने उनको कई बार बोला, बार बार बोला मोक्ष ले लो, मोक्ष ले लो, मोक्ष ले लो, प्रहलाद महाराज ने कहा नहीं चाहिए। और बल्कि प्रहलाद महाराज ने जब प्रार्थना की तो प्रहलाद महाराज ने कहा मुझे हजारों योनियों में डाल देना भगवान, बस एक कृपा करना कि मैं आपका स्मरण करता रह सकूं, बस। बस एक कृपा करना कि मैं आपका स्मरण कर सकूं। कोला बेचा श्रीधर अपने पेट पे गीला करके गमछा बांध लेते थे ताकि भूख कम लगे, पैसे नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला मांगो, क्या मांगते, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जब बारिश होती थी तो छत टूटी हुई थी, छत से पानी टपकता था, छतरी भी नहीं थी, बाहर जाओ तो बारिश, अंदर बैठो तो बारिश, ऐसी उनके हालात थे कोला बेचा श्री। और जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला मांगो, क्या मांगो? तो आपको पता है क्या मांगा? बोला बच्चा श्रीधर, श्रीधर ने बोला कि आप प्लीज, मुझे आज भी याद है कि आप मेरे पास आते थे और जबरदस्ती मेरा सामान छीन के ले जाते थे मेरे से, और मुझे कहते थे अगर हिम्मत है तो पैसे लेके वसूल करके दिखा दे। तो कोला बेचे श्रीधर ने बोला कि आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि आपका वो रूप जब आप मेरे से जबरन सामान छीन के लेके जा रहे हैं और आपको पता है मेरे पास कुछ नहीं है, ये सामान गया तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद है कि एक चपाती एक कौर मिल जाएगा खाने के लिए वो भी चला जाएगा, फिर भी आप मेरे से छीन के लेके जा रहे थे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका वो जो रूप है सदैव मेरे हृदय में अंकित रहे, वो जो छवि है मैं हमेशा अपने हृदय में दर्शन करता हूं। उन्होंने नहीं कहा कि मुझे पैसे चाहिए, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, डिवोशन भक्ति अच्छे से नहीं कर पा रहा, पैसे होते तो अच्छे से भक्ति करता, भक्ति और पैसे का कोई लेन देन नहीं, कोई सरोकार नहीं, भक्ति यहां से होगी हृदय से। भक्ति यहां से भी नहीं होगी, भक्ति पैसे से नहीं होगी। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि मुझे कितने ही जन्म दे देना भगवान, लेकिन अरे यार इसको समझाओ यार, मतलब सारे इसको समझा रहे हैं रुक ही नहीं रहा यार ये। सो प्रहलाद महाराज ने बोला कि हजारों लाखों जन्म देना लेकिन आपको मैं भूल नहीं पाऊं, आपकी भक्ति में लगा रहा हूं, प्लीज इतना मुझ पर कृपा करना। चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 शिक्षाएं दी हैं और उसमें से एक शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने क्या दी है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता वा जगदीश काम ये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुक। मुझे जन्म जन्म आप अहेतु की भक्ति देना, मुझे धन सुंदरी अच्छा परिवार कुछ नहीं चाहिए, मुझे कितने जन्म देना, कितने जन्म देना मतलब मोक्ष को साइड पे करके, मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष का क्या करना है जहां पर भगवान नहीं है, हमें भगवान चाहिए मोक्ष नहीं चाहिए, हमें भगवान चाहिए धन नहीं चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि बार बार भगवान ने उनको बोला कि ले लो कुछ ले लो कुछ ले लो, मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपके चरण कमल का मैं स्मरण करता रह सकूं, बस मुझे इतना ही आवश्यक, इतना ही मुझे चाहिए। और शिव जी ने कहा कि अगर हम प्रहलाद महाराज को अगर तुलना करें ब्रह्मा शिव लक्ष्मी से, कोई तुलना नहीं है, ब्रह्मा जी शिव जी तो किसी ना किसी कारण भगवान का दर्शन करते रहते हैं, किसी ना किसी वजह से, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी कुछ हो गया, किसी मीटिंग में मिल गए, कहीं पे यज्ञ हो रहा है चलो गए मुलाकात हो गई दर्शन हो गए, है ना, जैसे दक्ष के वहां गए थे ना, ब्रह्मा जी भी थे शिव जी भी थे भगवान भी थे वहां दर्शन होते रहते थे। और लक्ष्मी जी तो 24 घंटे साथ हैं, लेकिन शिव जी कह रहे हैं कि इन तीनों से श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज। हालांकि प्रहलाद महाराज भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर रहे, सिर्फ याद कर रहे हैं भगवान, साक्षात दर्शन नहीं कर रहे। वो सुतल लोक में बैठे हैं, भगवान को लक्ष्मी जी लेने चली गई, बात खत्म हो गई, अब कहां पे दर्शन है। कह रहे फिर भी प्रहलाद महाराज श्रेष्ठ है, क्योंकि वो याद कर पा रहे हैं, लगातार भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं ना। संता सदैव हृदय शुभ लोग, जो संत हैं, जो साधु हैं, वो साक्षात दर्शन नहीं भी हो प्रॉब्लम नहीं है, हृदय में सदैव भगवान का दर्शन कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? अपनी भक्ति के बल पर, अपनी भक्ति के बल पर, उनके इस संकल्प के बल पर कि मैं जो भी करूंगा भगवान की प्रसन्नता के लिए करूंगा। और क्योंकि प्रहलाद महाराज की इतनी अद्भुत स्थिति है, उनके परिवार वालों को चाहे असुरी क्यों ना हो भगवत कृपा प्राप्त हो रही है, चाहे असुरी क्यों ना बनते, तो अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि अगर आप अपने परिवार वालों का कल्याण चाहते हो तो एक काम अगर करना है तो कौन सा काम करना पड़ेगा? वो एक काम है कि हम भगवान के अच्छे भक्त बन जाए। बैंक बैलेंस छोड़ने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, या ये सोचे कि दो चार पांच प्रॉपर्टीज खड़ी कर देते हैं हर बच्चे के नाम पे, एक एक दो दो प्रॉपर्टीज, वो फर्क नहीं पड़ेगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आपने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए, कपूत है उड़ा देगा, तो क्यों इकट्ठा कर रहे हो? और अगर सपूत है तो इकट्ठा कर लेगा, तो क्यों इकट्ठा कर रहे हो तुम तो? नहीं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन। तो अगर भलाई करनी है, अगर कल्याण करना है, अगर हम वाकई में अगर हम अपने घर वालों से, अपने बच्चों से, अपने पोतों से, अपने पति से, पत्नी से, भाइयों से, माँ बाप से अगर हम प्रेम करते हैं तो हमें उनके कल्याण के लिए खुद भगवान का अच्छा भक्त बनना पड़ेगा। अगर हम भगवान के अच्छे भक्त बन गए तो भगवान हमारे घर वाले चाहे कैसे भी हों, उन पर कृपा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको प्रसन्न करना है। उसके लिए नहीं कर रहे, आपके लिए करें। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब भगवान के अच्छे भक्त बनिए। भगवान के अच्छे भक्त कैसे बन सकते हैं? श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं का पालन करके। श्रीमद् भागवत ने कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं दी है, श्रीमद् भागवत ने सिर्फ यही बोला है कम से कम 16 महीना का जप करो, भोग लगा के खाओ, मेरे ग्रंथ पढ़ो, बस, और कुछ कह ही नहीं रहे हो, और कुछ नहीं कह रहे। तो आप सब श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ो, कम से कम 16 माला का जप करो। 16 माला का जप करना हमारे लिए विकल्प नहीं है, करें या ना करें ऑप्शन नहीं है, करना ही है। कोई भी चीज खाए, भगवान को भोग लगा के खाए, इसमें कोई विकल्प नहीं है, ये हम कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जब हम कोई भी काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखना प्रभुपाद की शिक्षाओं से मैच कर जाएगी। क्योंकि प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि आप कुछ भी करो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो, कुछ भी करो चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए। आप कोई भी काम कर रहे हो सोच लो क्या भगवान प्रसन्न होंगे इससे, हाँ तो करो नहीं तो मत करो। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम। शरणागति के बारे में बताया कि शरणागति क्या है, तो शरणागति के जो पहले 6 नियम है उसमें पहले 2 नियम जो है वो ये है कि जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करो, और जो भक्ति के प्रतिकूल है प्रतिकूलस्य वर्जनम उसको रिजेक्ट कर दो, नहीं करेंगे हम, बहुत फायदा होगा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति के प्रतिकूल। अगर आप इस सिद्धांत को याद रखोगे, अगर आप इस बात को अपने हृदय में बिठा लोगे, आपका ना तो कभी फॉल डाउन होगा, ना कभी भक्तों की संगति छोड़ोगे आप, और बहुत जल्दी भगवान के अच्छे भक्तों में आपकी गिनती होगी, और उससे आपको तो लाभ हो गई। ऐसा थोड़ी ना कि कृष्णा बोलेगा अच्छा ये अच्छा भक्त है इसको तो डालो नरक में, इसके घर वालों का ध्यान रखता हूं, ऐसे थोड़ी ना करेंगे। आपका भी ध्यान रखेंगे और आपके परिवार का भी ध्यान रखेंगे। तो जो भी आपको सेवा मिले, कुछ भी भगवान की सेवा का अवसर मिले, सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। ऐसे नहीं अनमने मन से यार पता नहीं क्या बसूरी में डाल दिया, अच्छे भले चल रहे थे ऐसी बेकार में सेवा डाल दी हमारे ऊपर, नहीं, सहर्ष स्वीकार करनी चाहिए, खुशी खुशी स्वीकार करनी चाहिए। जितनी खुशी से हम सेवाएं लेंगे और जितनी भगवान की सेवा के लिए हम पेंस लेंगे, दुख उठाएंगे, भगवान का ध्यान उतनी मात्रा में हमारी ओर आकर्षित होगा। भगवान कहेंगे यार ये वाकई में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ये भक्त मेरे लिए तकलीफें उठा रहा है, तो मैं क्यों ना इसकी हेल्प करूं, इसका ध्यान, है ना। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने का सीधा सा तरीका है अच्छे से भक्ति करो। अच्छे से भक्ति का मतलब है सेवा का कोई अवसर हाथ से मत जाने। ठीक है, हरे कृष्ण।